ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। माल और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने ऑनलाइन मनी गेमिंग के अवैध और अनुपालना नहीं करने वाली 357 वेबसाइट को बंद कर दिया है। महानिदेशालय ने विदेशों से संचालित ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। ऑनलाइन मनी गेमिंग उद्योग में देशी और विदेशी कंपनियां शामिल हैं। सट्टेबाजी और जुआ से जुड़ी लगभग 700 विदेशी कंपनियां महानिदेशालय की नजर में हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये कंपनियां जीएसटी के संदर्भ में पंजीकरण, कर भुगतान करने और कर नियमों का पालन करने में विफल रही हैं। सरकार ने आम जनता को सतर्क रहने तथा विदेशी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ न जुड़ने की सलाह दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा है कि संगठन किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने और वहां से सुरक्षित वापस लाने के अभियान पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान पर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसरो इस काम को वर्ष 2040 तक पूरा कर लेगा। डॉक्टर नारायणन ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। उन्होंने कहा कि इसरो एकमात्र संगठन है जिसने केवल एक रॉकेट का प्रयोग करते हुए पहले प्रयास में ही मंगल अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने का प्रस्ताव स्वतंत्र और आंतरिक जांच प्रक्रिया से अलग है। ये बयान दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नकदी बरामद होने की खबरों के बाद आया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम ने बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव की जांच पड़ताल की, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार न्यायाधीशों, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीश यशवंत वर्मा को पत्र लिखे गए। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच पड़ताल के बाद कॉलेजियम एक प्रस्ताव पारित करेगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज इम्फाल दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल के 3 न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश ने चूड़ाचांदपुर का दौरा किया। वे वहां विधिक सेवा शिविर, स्वास्थ्य शिविर, विधिक सहायता क्लिनिक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने राहत शिविर में शरण ले रहे विस्थापित व्यक्तियों IDP को राहत सामग्री भी वितरित की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हाल में नागपुर में हुई हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई घटना के लिए जिम्मेदार दंगाइयों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि भुगतान न करने पर उनकी संपत्ति जब्त कर बेचने की कार्रवाई की जाएगी। श्री फडणवीस ने नागपुर हिंसा के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि पीड़ितों को मुआवजा अगले 2 से 4 दिन में दे दिया जाएगा। बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में आज बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर चर्चा की गई। इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक समुदाय से बांग्लादेश सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर 660 करोड़ रुपए के रिएजेंट और मेडिकल उपकरणों की खरीद में घोटाला करने का आरोप है। EOW द्वारा गिरफ्तार अधिकारियों में आर्थिक अपराध शाखा के कॉरपोरेशन के 2 महाप्रबंधक और स्वास्थ्य विभाग के 1 उपनिदेशक भी शामिल हैं। IPL क्रिकेट के 18वें संस्करण का रंगारंग उद्घाटन कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में हुआ। समारोह में शाहरुख खान, दिशा पटानी, प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोषाल और पंजाबी गायक करण औजला प्रस्तुति दे रहे हैं। शाम 7:30 बजे पहले मैच में वर्तमान चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। उधर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल सेमीफाइनल में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शेंग लू यू और तेन निंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक त्रिशा और गायत्री ने पहला गेम 21-15 से जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।